पृष्ठ संख्या 70, अध्याय 5। अकेला मूल राज ही था जो पंचायत की बैठक में अभी भी सिर पर पगड़ बांधकर बैठता था। यूँ अब पंचायत किसी नुचे खुचे फटे पुराने चिथड़े सी रह गई थी। बस्ती टूटने के बाद शहर से 5 मील दूर जिस सपाट बीहड़ मैदान में लोगों को लारियों पर भरकर लाया गया था, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग यहाँ से जा चुके थे और दिल्ली के विभिन्न भागों में अपना सिर छिपा पाने के लिए कहीं न कहीं टिक गए थे। कुछ थे औरतें और मर्द जो पौ फटते ही काम पर निकल जाते थे। यहाँ से लगभग 2 फरलांग दूर बड़ी सड़क पड़ती थी और पौ फटते ही निकल जाओ तो बस या टेम्पो मिल जाता था। फरलांग भर की दूरी पर पानी का नल था, वहीं से सभी लोग घड़े भर भर कर लाते थे। नल पर रोज धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा होता था। मैदान में ले देकर 2 पेड़ थे, एक नीम का अच्छा घना पेड़ था जिसके नीचे दिन भर बस्ती की बूढ़ी औरतें और मर्द और बच्चे पड़े रहते थे। दूसरा एक टेढ़ा मेढ़ा सा पेड़ मैदान के दूसरे छोर पर बड़ी सड़क की ओर जाने वाली पगडंडी पर पड़ता था। रात को घर लौटने पर तो उसे देखकर ही डर लगता था और अब सुकून का फास होता था। दिन को धरती तपती थी, धूल के बवंडर उठते थे और रात को जैसे भूत नाचते थे। फिर भी बस्ती वाले निठल्ले नहीं थे। मिट्टी, गारा, ईंट, पत्थर जो भी मिला उससे छोटी मोटी 8-10 कोठरियाँ उन्होंने यहाँ भी उसार ली थीं। उन्हीं के सामने इनके अधनंगे बच्चे खेलते, औरतें चूल्हा जलाती, वहीं मैदान में दिशा हाजत होती। किसी ने टाट तो किसी ने लकड़ी की खपचियाँ जोड़ जोड़ कर पर्दा कर लिया था। और तो और यहाँ पर तो ब्याह भी हो चुके थे। काम पर से लौटती हुई मंजूर ने अक्सर गाती हुई ही मैदान पार करती थी और तपती लू में नीम के पेड़ के नीचे बैठा बोधराज का बूढ़ा बाप सन बढ़ता हुआ अक्सर पेड़ की ओर देखकर यही कहता था, किसी साधु महाराज का लगाया पेड़ है जो हम पर अपनी ठंडी छाह कर रहा है। अंधेरा उतर रहा था। पंचायत में 7-8 आदमी आए थे। पंचायत के चौधरियों में अब अकेला मूलराज ही पीछे रह गया था और सच पूछो तो उसका पृष्ठ संख्या 71 भी अब पगड़ ही पगड़ रह गया था। हीरा जो पहले बहुत नुक्ते निकाला करता था अब बस्ती ही छोड़ गया था और अजमेरी गेट में किसी रंग रोगन बेचने वाले के यहाँ नौकरी करने लगा था और ग्राहकों को रंग के डिब्बे उठा उठा कर देता था। पंचायत के अन्य 2-1 चौधरियों में से भी कभी कोई आकर बैठता कभी नहीं बैठता था। मूलराज ने बात चलाई, हम साहब से मिल आए हैं, उन्होंने जमीन का नक्शा दिखा दिया है। साहब कहता था सभी को 9-9 गज जमीन देंगे, यह तो पिछले 4 महीने से सुन रहे हैं। सुनो सुनो बोधराज, पहले बात सुनते हैं फिर मुंह खोलते हैं, तुम सुने बिना ही अपनी हांकने लगते हो। सुनाओ सुनाओ क्या सुनाते हो। बोधराज पहले से ही बिफरा बैठा था, अभी अभी काम पर से लौटा था और लौटने पर पता चला था कि बच्चे को ताप चढ़ा हुआ है। कुछ देर तक बच्चे का माथा सहलाते रहने के बाद सूखे मुंह यहाँ चला आया था। सिर पर रखी काली टोपी और नीचे झुलसा हुआ काला चेहरा, दोनों पर सफेदी के छींटे पड़े थे। बीड़ी फूंकते फूंकते बात कर जा तो दाई आंख बार बार झपक झपक जाती थी। साहब बोला कि जमीन का नक्शा तैयार हो गया है, अब पास होने की देर है कि इधर काम शुरू हो जाएगा। कौन सा काम? बस्ती उसारने का काम। और कौन सा काम? सबको 9-9 गज जमीन मिलेगी, यह तो तुम हर बार कहते हो। हाथ की हथेली पर जर्दा चूना रगड़ता हुआ मतीराम बोला, जो पैरों के बल बैठा बोधराज की ही तरह विश्वास खो बैठा था। पहले नक्शा बनता है या नहीं? तुम तो खुद राज मिस्त्री हो, अब किस चीज का नक्शा बना है? बस्ती का नक्शा? और किस चीज का? कहाँ सड़कें बनेंगी, कहाँ कोठरियाँ खड़ी होंगी। पृष्ठ संख्या 72। इस पर बोधराज उठ खड़ा हुआ, इधर भनचोत पानी का ठौर नहीं, न घर न बाहर, उधर यह सड़के बना रहा है। बैठो बैठो बोधराज, उठ क्यों खड़े हुए हो? अरे छोड़ो, जब बनेगा देख लेंगे। सुबह भंचोत 7 बजे निकलते हैं, साइकिल पर पैडल मार मार कर भंचोत 7 मील दूर काम करने जाते हैं, थके मांदे लौटे हैं तो इसकी ललत रानियां सुनो। नक्शा पास हो रहा है, सड़क बन रही है और वह झींकता बड़बड़ाता कोठरियों के झुरमुट की ओर जाने लगा। रुको रुको, जा कहाँ रहे हो, बैठो। तुम बैठो, तुम सुनो, हमें नहीं सुनना है, बोधराज ने झल्ला कर कहा, पर फिर से 2 कदम जाकर पलट कर खड़ा हो गया। इससे यह नहीं कहा गया कि चलो साहिब हमारे साथ चलो और चलकर अपनी आंखों से देखो कि हम कैसे जी रहे हैं। यह तो इसे बोला नहीं गया, उल्टा सरकार की सफाई देने लगा है, नक्शा बन गया है। इस पर मूलराज बिगड़ गया। हम आगे से कचहरी नहीं जाएंगे, जिसे जाना हो जाए, बोधराज को भेजो। बैठो बैठो बोधराज, इधर आओ, लौट आओ। इस बार बोधराज वहीं खड़े खड़े बोला, क्या कर लिया पंचायत ने, उधर बस्ती टूटी, क्या किया पंचायत ने, तब भी छह छह चक्कर लगाता था मूलराज, और अब क्या कर लेगी, जब सरकार की मर्जी होगी करेगी, तुम और कुछ नहीं कर सकते। इस पर मतीराम उसे समझाता हुआ बोला, यह तो हम भी जानते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, पर मिल बैठते तो हैं, अपने अपने सुख दुख की बात तो करते हैं, अब बैठ जा। बोधराज लौट आया पर फिर भी बड़बड़ाता रहा, क्या करेगी पंचायत, उसने कहा और हाथ चमकाते हुए बोला, रामू की बेटी भाग गई थी ड्राइवर के साथ, क्या कर लिया पंचायत ने, बैठ जा बैठ जा। मतीराम उसे बैठाने की कोशिश कर रहा था। पृष्ठ संख्या 73। लौट आई या नहीं लौट आए, अब फिर अपने घर वालों के पास तो आ गई है, मूलराज ने सफाई देते हुए कहा, इसमें पंचायत ने क्या किया, वह अपने आप लौट आई, तुम्हारे किए क्या हुआ। फिर जमीन पर बैठते हुए मूलराज को संबोधन करके बोला, मूलराज अब यह पगड़ वगड़ उतार दे, अब तेरी पंचायत नहीं चलेगी। अरे बैठो बैठो, पंचायत को सिर्फ इसलिए तो नहीं बुलाया है, और भी बहुत सी बातें हैं करने को, तुम तो सारा वक्त घोड़े पर चढ़े रहते हो। बोलो चलो आगे मूलराज, यह बात तो होती रहेगी। इस पर मूलराज ने फिर से पगड़ सीधा किया और बोला, रामदयाल। बोलो भाई किधर है रामदयाल, यह रहा, अब कहो अपनी बात, इसे अब क्या कहना है, मामला साफ हो गया, इसकी घरवाली लौट आई है। मतीराम बीच में बोला, लौट आई है तो फिर भी तो भाग सकती है, रामदयाल तुनक कर बोला। लौट आई है तो फिर भी तो भाग सकती है, रामदयाल तुनक कर बोला। किधर है राधा तेरी घरवाली, बुलाओ उसे, वह नहीं आएगी, मतीराम ने जोड़ा। शर्म के मारे नहीं आती है या कोई और बात है, इसी से पूछो, सामने बैठा है, मतीराम ने रामदयाल की ओर इशारा करते हुए कहा। तू क्या चाहता है रामदयाल, मूलराज ने पूछा। मैं कहता हूँ उसे दंड मिले। क्या दंड मिले, उसका घर से निकलना बंद कर दो, बस्ती के बाहर नहीं जाए। इस पर मतीराम हंसकर बोला, यहाँ बस्ती कहाँ है जो बाहर नहीं जाए, यहाँ तो मैदान ही मैदान है, पानी भरने नहीं जाएगी, दिशा हाजत के लिए नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाए, यहाँ बाहर कौन सा है और अंदर कौन सा है। पृष्ठ संख्या 74। और घर पर बैठेगी तो 2 पैसे जो चौका बर्तन से कमाती है वह भी नहीं कमाएगी, उसका रमेश नगर में जाना बंद कर दो। हाँ यह दंड लगा दो कि रमेश नगर नहीं जाए, या तो कुछ बात हुई, मूलराज बोला। इस पर मतीराम फिर हंस दिया, वह रमेश नगर नहीं जाएगी तो वह छोरा इधर नहीं आ सकता, किसी और से आंख नहीं लड़ा सकता, तू असल बात पर आराम दयाल, तू उसे पीटना छोड़ दे, वह कहीं नहीं जाएगी, वह काम ही ऐसे करे तो पीटू नहीं, रामदयाल ने तनिक खिसियाते हुए कहा। अरे पीटता था तभी भाग गई थी, अब पीटेगा तो फिर भाग जाएगी, बात यहाँ आकर सहसा अटक गई। कुछ लोग रामदयाल को समझाने लगे कि घरवाली को पीटना छोड़ दे, कुछ और थे जो रामदयाल का पक्ष लेने लगे कि घरवाली की पिटाई करना क्या बुरा है, सभी करते हैं, प्राचीन से चली आई है कि औरत सीधे रास्ते पर चलेगी ही तब जब उसे दंड का भय होगा। कुछ लोगों ने कहा, राधा को बुलाओ, पंचायत में औरत मर्द सब अपनी बात कहते हैं, उसे भी जो कुछ कहना है आकर कह ले। एक आदमी राधा को बुलाने भी गया पर वह नहीं आई। पंचायत के सदस्य इस मामले से उलझ ही रहे थे कि सायकाल के झुटपुटे में मैदान की ओर से कोई आदमी आता दिखाई दिया, टेढ़ा चलता हुआ धीरे धीरे बढ़ता आ रहा था, बुलाकी था, वही अंगरखा पहने झूलता, लंगड़ाता, लाठी पटपटाता चला आ रहा था। उसे पहचानते ही मतिराम हंसकर बोला, बुलाकी राम है, जोधपुर के दरबार से सीधा चला आ रहा है। बुलाकी राम के आ जाने से वातावरण का तनाव सहसा शिथिल पड़ गया था। लोग हंसने बतियाने लगे, आओ बुलाकी आओ। मूलराज ने उसका स्वागत करते हुए कहा। बुलाकी स्वयं इस बस्ती में नहीं रहता था। उसने रूपनगर को जाने वाली सड़क के किनारे एक खोखा किराए पर ले रखा था। वहाँ पीछे मजदूरों की एक पृष्ठ संख्या 75 बस्ती थी, जिसमें कुछ एक राजपूतों के भी थे। वहीं पर उसने कपड़े सीने का अपना धंधा फिर से शुरू कर दिया था। कैसे आना हुआ बुलाकी? मूलराज ने पूछा। आज पंचायत बैठेगी, मुझे पता चला, मैं अपनी फरियाद लेकर आया हूँ। बुलाकी के कण से गक गक का शब्द निकला और वह हाथ झटक कर बोला, चौधरी 900 रुपये हमसे झाड़ कर ले गया। किस बात के 900 रुपये बुलाकी? किस बात के? अपनी बेटी का ब्याह मेरे संग करने के, और किस बात के? यह तो बड़ा जुल्म है बुलाकी। मतीराम ने सिर हिलाकर हमदर्दी जताते हुए कहा, तेरा ही जिगरा है जो अभी तक चुप है बुलाकी। रामदयाल भी बीच में शामिल हो गया। सभी जानते थे कि ना यह बुलाकी का पहला ब्याह है और न ही पहली बार उसके रुपये झाड़ लिए गए हैं। अपनी तारीफ सुनकर बुलाकी हुमक कर बोला, जिगरा नहीं तो क्या? 3 बार उससे ब्याह रचाया, तीनों बार हमें धोखा दिया, अब हम ही हैं चुप हैं। नहीं, कोई और होता हथकड़ी लगवा देता। सच है सच है, मतीराम ने सिर हिलाकर कहा और बगल में बैठे रामदयाल की ओर कनखियों से देखकर मुस्कुराने लगा। तभी से बुलाकी के दूल्हे का अंगरखा नहीं उतरा। क्या मालूम कब ब्याह का मुहूर्त निकल आए। अब अंगरखा जो पहना है बुलाकी राम, तो इसे तभी उतारना जब बहू घर आ जाएगी, किसी ने हंसकर कहा। सच्चा राजपूत है बुलाकी? राजपूतों की आन निभाइयों, बुलाकी राम हम सब तुम्हारे साथ हैं। बुलाकी राम को सुनकर बड़ा संतोष हुआ। अपने अपने ही होते हैं, उसके अंदर की बात समझ लेते हैं, उसके गुण पहचानते हैं। बुलाकी ने सचमुच मन ही मन शपथ ले रखी थी कि तभी अपना यह अंगरखा उतारूंगा जब पृष्ठ संख्या 76 बसंती घर पर आ जाएगी। पृष्ठ संख्या 76। टूटती पंचायत फिर से जमने लगी। और तो और, गुस्सैल बोधराज जो कुछ ही देर पहले मूलराज के साथ उलझ रहा था, इसमें रस लेने लगा। किसी ने कहा, बुलाओ हीरा को, अपनी कोठरी में घुसा बैठा है, इधर बड़े बड़े मामले रुके हुए हैं। इस पर बोधराज की बगल में बैठे गणेशे ने हाँक लगाई, सब लोग आओ, बुलाकी राम आए हैं, मर्द औरत सभी चले आओ। फिर मती राम ने बड़े सोच विचार का अभिनय करते हुए जमीन पर से एक कंकड़ उठाया और जमीन पर ही लकीर खींचते हुए कहा, बात साफ है, बुलाकी की इज्जत हम सब की इज्जत है। इस पर पगड़ बांधे बैठा मूल राज बोला, पर बुलाकी राम से पूछो, 3 बार चौधरी इसे चकमा दे गया, इसने हमें बताया क्यों नहीं? ठीक कहते हो, हमें खबर क्यों नहीं की? नहीं तो इस वक्त तक बुलाकी की बहू का पैर भारी होता। खिखी करके कुछ लोग हंस दिए। इससे यह भी पूछो, 3 3 बार इसने ब्याह रचाया, इसने हमें बुलाया तक नहीं। खिलाना पिलाना तो समधियों ने था, तू हमें साथ तो ले चलता। बुलाकी को बहुत दिन बाद आत्मीयता का अनुभव हो रहा था। आम तौर पर जो कोई उसे मिलता था मस्खरी ही करता था, पर यहाँ पहली बार उसे लगा जैसे इन लोगों की बातों में आत्मीयता झलक रही है। इन लोगों ने उसके दर्द को महसूस किया है। अपने ही लोग उलाहना देते हैं कि उन्हें ब्याह पर नहीं बुलाया। अंधेरा बढ़ जाने से लोगों के चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। उनके चेहरे का भाव वह नहीं देख सकता था, लेकिन उनकी आवाज़ में सचमुच उससे आत्मीयता की गूंज सुनाई पड़ रही थी। बुलाकी हाथ आगे बढ़ाकर भाव विह्वल लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, अपने अपने होते हैं, तुम मेरे सिर पर 100 जूता मारो, सो भी मुझे मंजूर है। मुझसे भूल हुई, क्षमा कर दो, मैं एक बार नहीं 10 बार तुम्हें न्योता दूंगा। बस एक ही अर्ज है मेरी, मेरा काम करवा दो, लौंडिया मेरे घर आ जाए। बात हुई ना, हमने पहले ही कहा था, बड़े गुर्दे वाला आदमी है। पृष्ठ संख्या 77 बुलाकी राम। कुछ और लोग भी पंचायत में आकर बैठ गए थे। दो दो, एक एक करके आदमी स्त्रियां चले आ रहे थे। बस्ती के बच्चे भी आसपास डोलने लगे थे। ब्याह तो हुआ समझो बुलाकी राम, बस अब पंचायत के सामने आ गई है, अब तो यह हम सबका काम है, पक्की बात। बुलाकी ने चिल्लाकर कहा, पक्की नहीं तो क्या, पत्थर पर लकीर समझो। मतीराम ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, फिर बोला, अब इसी पर सबका मुंह मीठा करवा दो। बुलाकी राम भावावेश में बोला, चौधरी ने 900 लिए, मैं तो 1,000 भी दे दूं, 1,200 भी दे दूं, छोरी 14 बरस की है, पर वह हमारे साथ धोखा तो नहीं करे, जवान करके मुकर तो नहीं जाए। और बुलाकी ने सदा की भांति अंगरखे के अंदर हाथ डालकर रुमाल में बंधा नोटों का पुलिंदा निकाल लिया। आपकी दया से पैसे की कमी नहीं है और बुलाकी का दिल छोटा नहीं है। लो भाई, भले काम में देर नहीं होनी चाहिए, मतीराम ने ऊंची आवाज में सबको चुप कराते हुए कहा, आज मुहूर्त भी अच्छा है, मूल रात साहब से मिलकर आया है। एक पंथ दो काज। फिर आसपास बैठे लोगों की ओर ध्यान से देखते हुए बोला, कौन है हम सब में छोटा। फिर एक युवक को संबोधन करते हुए बोला, उठ गणेशा, चल शाबाश। इधर रामदयाल की साइकिल उठा ले और बुलाकी चाचा से पैसे लेकर 2 किलो लड्डू ले आ। 1 किलो बहुत होंगे, किसी ने कहा। नहीं, 2 किलो कहाँ से लाएगा भला। इधर बड़ी सड़क पर नटराज सिनेमा के पीछे पंजाबी हलवाई बैठता है, अच्छी बूंदी वाले 2 किलो लड्डू। फिर अपने ही सुझाव का संशोधन करते हुए मती राम बोला, केवल लड्डू ही खाओगे या बर्फी भी मंगवा लें, बुलाकी से पूछो। इस पर रामदयाल ने बुलाकी को समझाते हुए कहा, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा बुलाकी राम, इनका जितना मुंह मीठा करोगे उतना बढ़िया तुम्हारा काम करेंगे। पृष्ठ संख्या 78। मूलराज को चिंता हुई, मजाक मजाक में 3-4 किलो मिठाई हड़प जाएं और बाद में बने बनाए कुछ नहीं तो पीछे जरूर गाली गलौज होगा, बदमजगी होगी। बस बस, लड्डू ठीक हैं, बर्फी की जरूरत नहीं, मुंह लड्डू से मीठा करते हैं, यही प्राचीन से चली आई है। अभी तो बुलाकी की बारात पर सब लोग सजेंगे, बर्फी तब खा लेंगे। गणेशा कोठरियों में से साइकिल उठा लाया। कोठरियों की ओर से लोग लपक लपक कर आने लगे। बुलाकी को लग रहा था जैसे उसके ब्याह की चहल पहल अभी से शुरू हो गई है। उसने रेशमी रूमाल में बंधे पुलंदे में से 10-10 के 2 नोट निकालकर गणेशे के हाथों में दे दिए। ताजा बूंदी वाले हों, देख कर लाना, मतीराम बोला। जब गणेशा चला गया तो बुलाकी पंचायत को अपनी दर्द कहानी सुनाने लगा। 3 बार धोखा दिया चौधरी ने, उसने रुंधे गले से कहना शुरू किया। मुझसे भूल हुई साहिबों, मैं पहले ही तुम्हारे पास नहीं आया। अब क्या कहता है चौधरी, हीरा ने पूछा। देर से आने के कारण हीरा इस बात को पकड़ नहीं पाया था कि पंचायत बुलाकी का मौजू बना रही है। क्या कहता है, बुलाकी भर्राई आवाज में बोला, उसने बेटी को गांव में बड़ी बहन के पास भेज दिया है। इस पर मूलराज ने मन भर कर सिर हिलाकर कहा, बुलाकी राम, वह तुमसे और पैसे झाड़ना चाहता है, मैं चौधरी की रग रग से वाकिफ हूँ। मैं तो कहूँगा चौधरी को यहाँ तलब करो, उसे दंड दो, पंचायत का दंड लगेगा तो अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएगा। इस पर बोधराज बीच में बोल उठा, अरे वह तो अपनी जात बिरादरी का नहीं है, उसे क्या दंड दोगे। बोधराज के मुंह से निकलना ही था कि मतीराम ने झट से उसे चुप कराते हुए फुसफुसा कर कहा, शौ शौ शौ, लड्डू आ जाने दे, फिर मुंह खोलना, अभी चुप बैठा रहा। बोधराज असमंजस में पड़कर चुप हो गया। अब पगड़ उतार दे मूले, अब यह पंचायत नहीं है। मूलराज ने पगड़ उतार कर बगल में रख दिया। उधर से गणेशा पृष्ठ संख्या 79 साइकिल पर आता दिखाई दिया। सबकी वाछें खिल गईं, सभी बुलाकी के गुण गाने लगे और उसे यकीन दिलाया कि चौधरी को पंचायत के सामने तलब किया जाएगा और अगर वह नहीं आया तो बेशक बुलाकी उस पर मुकदमा दायर कर दे, वह सब उसी गवाही देने के लिए कचहरी में जाएंगे। जब सभा विसर्जित हुई तो बुलाकी पहले से भी ज़्यादा झोल मारता हुआ मैदान पार कर रहा था। उसके चले जाने के बाद देर तक हंसी मजाक चलता रहा। बीहड़ मैदान में जहाँ केवल कहीं कहीं पर किसी अधकचरी कोठसी के सामने टिमटिमाते दिए लौ दे रहे थे, बीड़ी के कस खींचते हुए बस्ती के लोग मुंह में लड्डुओं की मिठास के चटखारे लेते हुए चौधरी और बुलाकी पर टिप्पणियाँ कसते रहे, पर किसी एक ने भी मजाक तक में इस तरह की टिप्पणी नहीं की कि 14 बरस की छोकरी के साथ 60 बरस का बुलाकी क्यों ब्याह करने जा रहा है। यहाँ तक कि बोधराज ने भी कुछ नहीं कहा।